ओम शांति। हम सभी बाबा के घर में बाबा का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। शिव जयंती सर्वश्रेष्ठ हीरे तुल्य जयंती, कैसे बाबा का इस धरा पर अवतरण हुआ हम बच्चों ने अनुभव किया। आप सभी भी कल इन आंखों से बाबा को देखेंगे, कैसे बाबा आते हैं, बच्चों से मिलन मनाते हैं, अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। तो इस महाशिवरात्रि पर और विशेष करके ये हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्लेटिनियम जुबली है, 75 वर्ष बाबा को इस धरा पर अवतरित हुए हो चुके हैं, अब वापस जाने का समय आ गया है। कैसे बाबा को हम सब प्रत्यक्ष करेंगे, क्या संकल्प लेंगे, वो तो आप सभी कल बाबा से मिलन मनाते हुए कोई न कोई श्रेष्ठ संकल्प करेंगे ही, क्योंकि सभी सेवा केंद्रों पर जब बाबा का झंडा लहराते हैं तो कुछ न कुछ प्रतिज्ञाएं करते हैं। बाबा ने इस सीजन बहुत से होमवर्क हम सबको दिए हैं और सभी सेंटर्स पर 10 वायदे प्रतिज्ञाएं मधुबन से भेजी जा चुकी हैं। बाबा की मुरलियों का सार हम सबके ध्यान पर है। बाबा चाहता है मेरा एक एक बच्चा ब्रह्मा बाबा के समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करे। जो कुछ बाबा ने किया उनके संकल्पों से, उनके बोल से, उनके कर्म से मिलान करते हुए जैसे बाबा ने किया वैसा बच्चे करें। मन जीत जगत जीत बनकर फिर से अपना स्वराज्य सतयुगी राज्य प्राप्त करें। तो बाबा की ये सब होमवर्क की बातें हम सबके ध्यान पर हैं और हर एक के अंदर ये लक्ष्य रहता है कि बाबा की हर चाहना को मुझे पूरा करना है। बाबा ने कहा और मैंने किया। 18 जनवरी से अभी तक 3 मुरलियां चली हैं और सभी में बाबा ने इस बात को अंडरलाइन कराया है, बच्चे मन जीत जगत जीत बनो। मन जीत स्थिति है क्या चीज, क्या मन पर भी जीत प्राप्त की जा सकती है? कहावत है, मन बड़ा चंचल है, मन मानता नहीं है। जो आत्मा का साथी है, जिसको बाबा ने कहा कि आत्मा का साथी है, मेरा है, वो मेरा ही कहना नहीं मानता। उसको हम आर्डर प्रमाण कैसे चलाएं, क्योंकि मन और कर्मिंद्रियों की बहुत गहरी दोस्ती है। कर्म इंद्रियों के अधीन होकर के मन काम कर रहा है और मन के अधीन होकर कर्म इंद्रियां चल रही हैं। हम सबको बाबा कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त कराना चाहते हैं और कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करने के लिए मन को जीतना जरूरी है। बाबा कहते, बच्चे मन तुम्हारा है और तुम इसको ऑर्डर करो एक सेकंड में फुल स्टॉप, या एक सेकंड में तुम इस साकार वतन से अव्यक्त वतन, अव्यक्त वतन से मूल वतन की सैर करो कराओ। आपका कहना वो मानना चाहिए, और जितना समय जिस स्थिति में आप स्थित होना चाहो उतना समय वो स्थित हो जाए। हम सब जानते हैं मन एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत श्रेष्ठ शक्ति है, और यदि शक्ति पर हमारा नियंत्रण हो जाए तो संकल्प सिद्ध होने लगेंगे। हम सभी आत्माएं सिद्धि स्वरूप आत्माएं बन जाएंगी, लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी कंप्लेन क्या है, बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मन कंट्रोल में नहीं रहता। कई बार योग में एक एक घंटा बैठते हैं, पांच मिनट भी अच्छे अनुभव करने नहीं देता, कहीं ना कहीं इधर उधर भटक जाता है। इसलिए बाबा ने एक बहुत अच्छा शब्द दिया था कि बच्चे मन जीत के पहले माया जीत बनो। मन माया के अंदर ही भटक रहा है और माया की जाल बहुत विस्तार की है। आप सब जानते हैं बाबा कहता है, जब मैं इस सृष्टि पर सतयुग बनाने के लिए आता हूं तो माया अपना एक नया स्वर्ग आप बच्चों के आगे रख देती है। कलयुग के अंदर माया का इतना बड़ा पॉम्प है, जो कई चीजें ऐसे दिखाई देती हैं जैसे सतयुग जैसी हैं। साइंस के साधनों के माध्यम से हम सब माया के पॉम्प को और नजदीक से देख रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन में एक चक्रव्यूह मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कहते हैं चक्रव्यूह को पार करने के लिए सात द्वार थे, और उस चक्रव्यूह से अभिमन्यु भी निकल नहीं पाया, जो अर्जुन का बेटा था, क्योंकि उसने छह द्वार को पार करने की कहानी अपने मां के पेट में सुनी थी। सातवें द्वार कैसे पार करना उसे मालूम नहीं था, इसलिए फंस गया और मारा गया। हम सब भी माया के चक्रव्यूह को जानते हैं और बाबा ने बहुत विस्तार से मुरलियों में सुनाया है। मैं आपके आगे उस चक्रव्यूह का थोड़ा सा वृतांत रखूंगा, क्योंकि मन उसी में उलझता है, और अगर उस चक्रव्यूह पर विजय हो गई, उससे निकल आए बाहर, तो मन जीत बन जाएंगे, मन पर नियंत्रण हो जाएगा। कैसे निकले उसकी बहुत सी विधियां हैं, लेकिन पहले सूक्ष्म जाल या चक्रव्यूह क्या है, आप सब देखते हैं, हम सब जानते हैं। इस देह भान में रहते रहते आत्मा इस देह और देह के बंधनों में बहुत फंसी हुई है। पहले चक्रव्यूह से निकलना ही मेहनत का काम है, और बाबा ने आदि से अंत तक अभी तक भी एक ही पाठ पढ़ाया है, बच्चे अपने आप को आत्मा निश्चय करो, मुझे याद करो। चक्रव्यूह पहला है, किसी न किसी देह और देह के संबंध में देहधारी की याद, उसके नाम और रूप में बुद्धि कहीं न कहीं फंसती है, अटक जाती है, लटक जाती है। कोई कोई आत्माएं अपना प्रभाव डाल देती हैं और उस प्रभाव के कारण आत्मा उनके अधीन हो जाती है, याद करने बाबा को बैठती और याद वो आत्मा आती है, देहधारी याद आते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें इस चक्र व्यूह से निकलना होगा, देह के बंधनों से, देह के नाम रूप से बुद्धि न्यारी हो जाए उसके लिए अभ्यास करना होगा। फिर दूसरा चक्र व्यूह में दूसरी जाल आती है आजकल, मान अपमान, पद और पोजीशन, नाम मान शान पद और पोजीशन। कोई थोड़ा सा भी कोई कार्य करते हैं, तन से मन से धन से कोई भी प्रकार की सेवाएं करते हैं, उसकी रिटर्न कोई न कोई अभिलाषा होती है, कुछ न कुछ चाहना रहती है। भले कहते हैं मेरा तो निस्वार्थ सेवा है, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है, लेकिन यदि वो सेवा करने वाले को, सेवाधारी को कोई न पूछे न बात करे तो उसका उमंग उत्साह कम हो जाता है, उसकी खुशी गायब हो जाती है। कोई न कोई प्रशंसक चाहिए हरेक को, और थोड़ी सी भी प्रशंसा थोड़ा भी महिमा कर दी जाती है तो उसकी खुशी का पारा चढ़ जाता है। एक बहुत सूक्ष्म जाल है, इसको आप सब देखना। एक बार बाबा ने बड़ी गुहेता से मुरली चलाई थी कि बच्चे आपके सामने दो प्रकार के व्यक्ति आते हैं, एक आपकी थोड़ी सी महिमा करता है, आपने बहुत अच्छा क्लास कराया, आपने बहुत अच्छी बात सुनाई, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी दृष्टि बहुत अच्छी है, आप योग बहुत अच्छा कराते हैं, आपकी प्रशंसा की है, और दूसरे ने आपके लिए कुछ एक सामने या दूर से कटाक्ष के शब्द बोल दिए, क्या क्लास कराते हैं। दोनों के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा? एक महिमा किया उसके प्रति दृष्टिकोण क्या होगा, एक ने थोड़ा सा आपके लिए कुछ गलत बोल दिया या कटाक्ष के शब्द बोल दिए, उसके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा? यदि आत्मा इस पेपर को, इस बात को समझ करके पार कर ले, पास हो जाए, तो माया के इस चक्र भी उसे बच सकती है। न महिमा और प्रशंसा में उसकी तरफ झुकाव हो जाए कि इसने बहुत अच्छा भाई है, ये बहुत अच्छी बहन है, इसने मेरे भाव को समझा, और अगर कोई ऐसा भी है तो कटाक्ष वाले के प्रति भी हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन ना आए, ठीक है, और सुधार लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए कहा जाता है निंदक नियरे राखिए, कोई निंदा करने वाला है तो नजदीक रहना चाहिए, और दोस्तों के लिए क्या कहा जाता है, भगवान तो मुझे दोस्तों से बचाना, दुश्मनों से मैं निपट लूंगा, सुना है ना ये। अगर हम सभी के सामने कोई न कोई एक आधा कोई ऐसा निंदक या ग्लानी करने वाला या कटाक्ष करने वाला होता है तो अपने ऊपर बहुत ध्यान रहता है, अपने ऊपर अटेंशन जाता है कि नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए, कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, कुछ कह देगा, वो हमारे लिए मित्र है क्योंकि वो हमें आगे बढ़ा रहा है। तो हमारे दृष्टिकोण में मान या अपमान, निंदा या स्तुति, प्रशंसा करने वाला या कटाक्ष करने वाला, दोनों के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। यदि मैं आत्मा इस चक्रव्यूह से निकल आई तो सदा एक रस स्थिति में रह सकती हूं, और नहीं तो ये माया का चक्र हमारी खुशी को छीन लेता है, हमारे उमंग उत्साह को कम कर देता है। तीसरा एक चक्र वर्तमान समय बहुत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है, धन और साधन। धन वैसे आवश्यक है और होना चाहिए, जरूरी भी है, सतयुग के अंदर सब धन धान्य संपन्न है, लेकिन कलयुग के अंदर वो धन माया का रूप बन गया है, इसलिए सन्यासियों ने शायद कहा है धन ही माया है, संपत्ति ही माया है, और इस संपत्ति रूपी माया के पीछे इतनी भाग दौड़ है जो संबंध बिगड़ जाते हैं, और कई बार देखा यह जाता है चरित्र पर भी दाग आ जाते हैं। आप सभी इस बात को समझ रहे होंगे, धन कैसे माया है इस समय, उसके पीछे कितना आत्माएं भटकती हैं, और अगर धन आ जाता है तो कैसे उसका दुरुपयोग करती हैं। सदुपयोग नहीं, अच्छे काम में लगे, बाबा की सेवा में लगे, भाग्य बने, उसकी बजाय अगर आज जो बाबा ने कहा कि अगर कोई को भी एक पाई भी व्यर्थ की तो उसका बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा बोझ चढ़ जाता है। साधन तो हम सब देख ही रहे हैं, साइंस अपना रूप दिखा रही है, बहुत नए नए अच्छे अच्छे साधन उपलब्ध करा रही है। तीन साधन आप सभी विचार करना, कितना नुकसान कर रहे हैं और कितने फायदे हो रहे हैं, हैं बहुत अच्छे। एक सबसे अच्छा साधन मोबाइल है ना, सबके हाथ में है, घर घर में है और सबके हाथ में। आजकल नौकर भी है ना, झाड़ू लगाने वाले, उनके हाथ में भी मोबाइल होता है, जहां चाहिए वहां बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा साधन है, मुट्ठी में दुनिया आ गई, लेकिन कितने नुकसान हो रहे हैं वो आप सब जानना और देखना। छोटी सी बात भी समा नहीं पाते हैं और फौरन आउट हो जाती है, संबंध बिगड़ जाते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावनाएं पैदा हो जाती हैं, कितना टाइम और कितनी एनर्जी, कितनी मनी वेस्ट होती है। साधन अच्छा है, सेवा का साधन है, और बाबा कहता है इस साधन का लाभ भी लो, लेकिन लाभ लेते लेते कई बार ये बहुत नुकसान करता है, प्राइवेट बातें शुरू हो जाती हैं और उसमें बहुत सी व्यर्थ इधर उधर की, अंदर की जो दिल के अंदर होती है वो बाहर फोन के द्वारा इधर उधर फैल जाती है। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को इस माया जाल से बचना चाहिए। साधन है अच्छा, दूसरा एक इंटरनेट की बहुत अच्छी माया है, अगर इंटरेस्ट आ गया इंटरनेट का, साधन अच्छा है, बहुत जल्दी मुरली पहुंच जाती है, वेबसाइट खोली और तुरंत मुरली मिल गई हाथ में, सुख का साधन है, उन्नति का साधन है, लेकिन अगर गलत साइट पर चले गए तो सारी माया और सारी नींद बेकार हो जाएगी, पूरी पूरी रात उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट, अपनी एनर्जी वेस्ट। इसलिए बहुत संभाल करके यूज करना है, साधन यूज किया जाए। शायद मुझे बाबा ने इतना ही सिखाया है कि जितना काम आता है, इसके आगे मुझे कुछ चलाना ही नहीं आता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये तीन साधन, एक टीबी, टीबी की बीमारी पैदा कर रहा है, भोजन भी कर रहे होंगे टीबी का सुई चान कर देंगे, कहेंगे हम तो न्यूज देख रहे हैं, लेकिन कितनी सारी गंदगी, कितनी सारी अश्लीलताएं, कितना सारा मन को व्यर्थ भोजन टीवी के माध्यम से मिलता है। तो इन तीनों चीजों पर अगर ब्राह्मण आत्मा, इन साधनों पर ध्यान नहीं है तो ये मन को कभी जीत नहीं सकते हैं। मन को जीतने के लिए इस माया के चक्रव्यूह को पहचानना पड़ेगा और उसे मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि मन को अच्छे विचारों का भोजन चाहिए। मन तभी जीता जा सकता है जब बहुत सकारात्मक चिंतन हो। उसकी मैं अलग से आपको व्याख्या दूंगा, लेकिन मैं एक चक्रव्यूह बता रहा हूं जो माया का वर्तमान समय चल रहा है। चौथा चक्रव्यूह, रीस और रेस। बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ की रेस करो, दौड़ी लगाओ, फास्ट स्पीड करो, लेकिन चलते चलते एक दूसरे से भेंट करके, रीस करके, ईर्ष्या के वशीभूत होकर के एक दूसरे से जलना और एक दूसरे के प्रति नेगेटिव विचारधाराएं फैलाना, रीस एक बहुत नुकसानकारक, एक बहुत सूक्ष्म माया है। इसके पास ये है तो मेरे पास भी हो, इसके पास ऐसे साधन है तो मेरे पास भी हो, और उसके पीछे कई आत्माएं कर्ज ले लेती हैं, जो कर्ज एक बहुत बड़ी मर्ज है। किसके यहाँ ऐसी गाड़ी है, इसका ऐसा बंगला है, इसके पास ऐसी फ्रिज है, इसके पास ये साधन है, मैं कोई कम थोड़ी हूँ। इसने इतना खर्चा अगर शादी में किया है, इतना ही इस काम में किया है, तो मैं कम करूंगा तो मैं नीचा हो जाऊंगा। लेकिन इस सूक्ष्म जाल को पहचानना, किसी से भेंट, किसी की तकदीर से भेंट करना, किसी के भाग्य से भेंट करना, एक सूक्ष्म माया है। इसलिए रीस में ना करके पुरुषार्थ की रेस करें, ईर्ष्या में ना आए, भेंट न करें, लेकिन अपने भाग्य के, अपने पुरुषार्थ के आधार से अपना ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनाएं। पांचवा, आप सब देख रहे हैं वर्तमान समय हदों के अंदर आत्माएं बनती जा रही हैं। बाबा विश्व परिवर्तन करने के लिए आया है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा की स्थापना कर रहा है, लेकिन सेवा एक बंधन बनती जा रही है। जो सेवा सुख देने के लिए है, जो सेवा बाबा के नाम को प्रत्यक्ष करने के लिए है, उस सेवा के अंदर हदों का बंधन आत्माओं में टकराव पैदा कर रहे हैं। मेरा एरिया, तेरा एरिया, इस एरिया में क्यों आया, उस एरिया में क्यों आया, बेहद का दृष्टिकोण, भगवान ने बेहद का यज्ञ रचा और विश्व परिवर्तन करने के लिए आया है, खुद भी सेवा नहीं कर सकते और दूसरों को भी नहीं करने देते, बहुत बड़ा पाप है, सूक्ष्म माया है। चेक करना कि यदि हम सब किसी भी हद की एरिया में, किसी भी हद के बंधन में अपने आप को बांध करके रखते हैं, न हम करते हैं न दूसरों को करने देते हैं, ये कौन सी सेवा है? इसलिए सेवा एक बंधन न बन जाए, माया न बन जाए, सेवा सुख देने और सुख लेने के लिए है, सेवा बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए है। इसलिए बेहद का दृष्टिकोण, बेहद में आत्माएं रहें। और छठी एक जो बहुत गहरी हम आप सब देख रहे हैं कि ब्राह्मण आत्माएं चलते चलते किसी न किसी अवज्ञा के बोझ के कारण योग और मुरली का सुख नहीं ले पाती। मुरली के समय या योग के समय विशेष नींद आती है, आलस, सुस्ती या बहानेबाजी। ये एक चक्रव्यूह है माया का, जो हमें बाबा के रत्नों से खेलने नहीं देता है या बाबा से मिलन मनाने नहीं देता है। योग में बैठते ही आंख बंद हो जाती है, कहेंगे अभ्यास ही मेरा आंख बंद करके योग करने का है। और बाबा ने पिछली मुरली में कहा कि बाप तो सभी बच्चों के पास अमृत वेले चक्कर लगाता है, लेकिन अगर बच्चे आलस्य में हैं तो बाबा चक्कर लगा के वापस चला जाता है। अगर वरदान लेना है, शक्ति लेनी है, तो बहुत अलर्ट होकर के बैठो, नहीं तो ये आलस्य की माया कोई अनुभव करने नहीं देगी। एक सातवां चक्र भी बहुत सूक्ष्म है, बहुत प्रभावशाली है, कलयुग के अंदर चल रहा है, लेकिन कई ब्राह्मण आत्माएं भी उस चक्र के अंदर आ रही हैं। आप सब जानते हैं, कह देते हैं ये तो कुछ न कुछ ऊपरी छाया है, रिद्धि सिद्धि, तंत्र मंत्र, भूत विद्या, मैली विद्या। जो एक ब्राह्मण आत्माएं अगर किसी चक्र में आ गई किसी कारण से भी, ये अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत बड़ा सूक्ष्म पाप है। इसलिए बाबा हम बच्चों को इनसे बचा रहा है कि इस चक्रव्यूह से बचो। अगर इसमें फंस गए तो मन कभी भी शांत नहीं होगा, कभी भी मन जीत बन ही नहीं सकते। मन जीत बनने के बाद जगत जीत बनना, मन हमारे नियंत्रण में आ जाए, सभी अपने इन सूक्ष्म माया के चक्रव्यूह को चेक करना, कहीं ना कहीं एक से निकल के दूसरे में फंस तो नहीं जाते। बाबा ने हम सबको जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करने के लिए कहा है, लेकिन जीवन मुक्ति स्थिति के बीच में ये सूक्ष्म बंधन, छोटे मोटे बंधन जीवन की मौज का अनुभव करने नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं बुद्धि लटक जाती, फंस जाती है, और फंसी हुई बुद्धि या मन ठीक यात्रा नहीं करा सकता है, उड़ नहीं सकता है। बंधा हुआ कोई भी चीज को बांध दिया जाए और उसको चलाया जाए, जैसे वो नाव चलाते हैं, अगर लंगड़ को बंधा हुआ है, खुला नहीं है, उसकी रस्सी खोली नहीं है, चप्पू चलाते रहो, नाव आगे बढ़ेगी क्या? यदि किसी भी बंधन में, किसी भी सूक्ष्म माया की जाल में आत्मा फंसी हुई है, तो ये मन न सूक्ष्म वतन जाएगा, न मूल वतन जाएगा, न मुक्त स्थिति का, न जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेगा, वहीं घूमता रहेगा उसी जाल में। और इसकी एक नेचुरल आदत है, ये संकल्प ही सारे कल्प का आधार है। सारे कल्प में संकल्प शांत नहीं होते, भले निर्संकल्प समाधि कहा गया है, लेकिन ये चलते ही रहते हैं। निर्संकल्प, बाबा एक बार कहा था, निर्संकल्प समाधि नहीं है, निर्व्यर्थ समाधि। कोई भी व्यर्थ संकल्प ना आए उसकी समाधि हो सकती है। शून्य संकल्प, डेड संकल्प नहीं होते, डेड साइलेंस नहीं है, डेड संकल्प नहीं है। इन संकल्पों को गति है, संकल्प माना ही गति, और अगर गति है तो, अगर अच्छी गति है, उसको हमने समझ के उसको रास्ते पर लगाया है, तो हमें अच्छे अच्छे अनुभव कराएगा। और अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया, कंट्रोल ना, तो भटकाएगा और परेशान करेगा। इसलिए कैसे हम मन को जीते, उसकी क्या क्या विधियां हैं, वो भी मैं आपको 6-7 विधियां बताए देता हूं, क्योंकि बाबा समय पर समय उन पर ध्यान खिंचवाते हैं। सबसे पहली विधि, अगर हम इन सबसे बचना चाहते हैं, तो आवश्यक है आंतरिक वैराग्य, दिल का वैराग्य। जब तक वैराग्य नहीं आता, तब तक त्याग नहीं होता। आप सब जानते हैं, जितने सन्यासी, जितने वैराग्य त्यागी हैं, त्याग किया है किसी ने घर गृहस्थ का, किसी ने अपने व्यवहारिक जीवन का, त्याग करके अगर वो जंगल में गया है, तो कोई ना कोई बात से उसको वैराग्य आया है। वैराग्य के बाद त्याग शुरू हुआ है। हम सबको भी बाबा कहते हैं, बच्चे ये दुनिया जाने वाली है, खत्म हुई पड़ी है, इसमें कोई चीज काम की नहीं है, असार संसार है, कोई सार इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसमें फंसना नहीं। बिल्कुल अंदर से, वेहत का, दिल से वैराग्य चाहिए। वैराग्य के बाद परिवर्तन आएगा, अगर वैराग्य नहीं है तो परिवर्तन आना असंभव है। दूसरी बात है, बाबा हमेशा कहते हैं, क्या बात कहते हैं बाबा, अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरा घोट के पिलाएगा तो नशा नहीं चढ़ेगा। अगर मैं अपने आप को बदलना चाहता हूं, तो क्या करना होगा, अपने आप को पढ़ाना पड़ेगा, दूसरा पढ़ाएगा, दूसरा क्लास कराएगा, दूसरा कोई शिक्षाएं देगा, उस तक ही रह जाएंगी, वहां तक ही रह जाएंगी। लेकिन अगर एकांतवास करके, एकांत में जाकर के, अपने आप से बातें करके, अपने नशे में, अपनी मस्ती में रहेंगे, तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इसलिए हमारी दीदी जी कहती थी, सबसे बड़ा टीचर वो है जो अपना टीचर बनना जानता है, अपने को पढ़ाता है। अगर हम अपने को बदलना चाहते हैं, इस माया के चक्रव्यूह से बचना चाहते हैं, तो अपने आप को पढ़ाना सीख लें, अपनी मस्ती। तीसरी बात है, एक बल और एक भरोसा। बाबा के बल में संपूर्ण भरोसा, बाबा की शक्तियां आजकल की रिद्धि सिद्धि वालों के आगे उनकी क्या शक्ति है। सर्वशक्तिमान का बल हमारे साथ है। दुनिया के अंदर कितना भी बुद्धि बल हो, धन का बल हो, शरीर का बल हो, सरकार का बल हो, कोई भी प्रकार का बल किसी के पास भी हो, लेकिन बाबा के बल के आगे सब बल फेल है। इसलिए एक बल, और एक में पूरा भरोसा, पूरा विश्वास, पूरा निश्चय कि बाबा हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, कोई आत्मा कोई भी चीज मुझे, तीन चीजों में भरोसा चाहिए। एक बाबा में विश्वास नहीं, सिर्फ अपने भाग्य में विश्वास, बहुत भाग्यवान मैं आत्मा हूं, भगवान ने मुझे चुना है, भगवान की मेरे ऊपर दृष्टि पड़ी है, फिर भगवान में विश्वास। भाग्य, भावी और भगवान, ये भावी जो है, बनी हुई निश्चित भावी ड्रामा की, ये बहुत कल्याणकारी है। संगम युग का समय बहुत कल्याणकारी है और बाबा मेरा बहुत कल्याणकारी है। अगर इस प्रकार की भावी को हम समझ करके चल रहे हैं तो भाग्य हमारा साथ देता है। भरोसा हो अपने भाग्य पर, इस बने बनाए भावी पर और भगवान पर। अगर ये भरोसा है और एक का बल हमने लिया है तो सहज माया जीत बन सकते हैं, मन पर जीत प्राप्त कर सकते हैं, साथ साथ सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट स्थिति चाहिए। कभी आप एकांत में बैठ करके अपने से पूछना, जब से मैं बाबा का बना हूं मुझे कितनी प्राप्तियां हुई, क्या क्या मिला है, क्या क्या बाबा ने हमें दिया है। अगर सचमुच दिल से अपने आप से बातें करेंगे तो अंदर जाकर के देखने से पता चलता है कि बाबा ने हमारी कितनी श्रेष्ठ जीवन बना दी, एक नई जीवन दी, अपना बनाया, धंधों से, दुनिया से, इधर उधर के लफड़ों से, पर चिंतन पर दर्शन से, बाहर के खान पान से, व्यर्थ खर्चे से, फजूल लेन देन से, सब बातों से बचाया है। संगम युग पर बाबा ने मुझे सब कुछ प्राप्त कराया है। दूसरों की प्राप्तियों से भेंट करने की बजाय इस जीवन में मुझे जो प्राप्तियां हुई हैं, यदि मैं उसका अंदर से चिंतन करूं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट आत्मा बन करके रहूं, अपने भाग्य के गुण गान करता रहूं, तो ये सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की आंख कहीं भी नहीं डूबती, किसी में भी नहीं डूबती। कोई के पास कितना भी क्यों ना हो, सब साधन सुविधाएं हो, मेरी बुद्धि कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि बाबा ने मुझे जो दिया है वो कोई को नहीं दिया है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम का जो खजाना मुझे मिला है, ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना जो मुझे बाबा से मिला है, कभी चिंतन करके देखो कितना मिला है, अथाह। और उस अथाह चिंतन का अगर हम सब सुख लेते हैं, प्राप्ति संपन्न होकर के रहते हैं, तो सहज ही मन पर जीत हो जाती है, माया पर जीत हो जाती है। और जितना समय मिले और जब समय मिले, एक अभ्यास कभी नहीं छोड़ना, वो है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, इस शरीर से भिन्न अलग हूं। जितना जिसने इस देही अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास कर लिया, उस सहज ही कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेगा, विजयी बन जाएगा, विक्रमाजीत बन जाएगा। इसलिए बाबा ने हम सबको आदि सो अंत यही मंत्र दिया है, अपने आप को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो। बच्चे, अपने आप को पहचानो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, जो आज दादी कह रही थी, स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहो। विश्व का राज्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी पहचान अभी से कर सकते हो। कितना समय मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन करके रहती हूं, कितना स्वराज्य अधिकारी हूं, कितना स्वतंत्र हूं, कितना समान में रहता हूं, कितना संतुष्ट हूं। अगर ये अपने आप से हम बात करते हैं, अपना चिंतन करते हैं, तो आत्मिक स्थिति में स्थित रहने से स्वराज्य अधिकारी भी बन जाते हैं, स्वतंत्र भी बन जाते हैं, स्वमान की भी स्मृति आ जाती है, अभिमान और अपमान के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो बहुत जल्दी अपमान की फीलिंग और बहुत जल्दी अभिमान आ जाता है। यही दो बीमारियां हैं, या तो अभिमान आता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, और या तो कोई अपमान कर देता है तो मेरे जैसा भी कोई नहीं, निराश, शायद मैं ही है, मेरा भाग ही ऐसा है, मेरा ही पार्ट ऐसा है, मैं कोई काम का नहीं हूं। इसलिए निराशा और अभिमान, या अपमान से निराशा आती है और मैंपन से अभिमान आ जाता है। दोनों से मुक्त होने के लिए बाबा ने हम सबको बहुत ऊंचे स्वमान की सीट दी है। बच्चे सदा अपने स्वमान की सीट पर रहो, अपने आप से बातें करो, बाबा ने जो इतना पढ़ाया है, इतना दिया है, उसका चिंतन करो, और चिंतन करते करते सकारात्मक चिंतन करने की कला सीख लो। आप हमको बाबा, सबको बाबा ने बता दिया है, बच्चे हर क्षेत्र में अति होनी है, नेगेटिविटी में हर क्षेत्र में अति होगी। अगर हमारे को नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना नहीं आता, अगर मैं हर नेगेटिव दृश्य में क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न उठाता हूं, यज्ञ में भी ये दिखाई देता, ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, ये तो बाबा ने मना किया है फिर भी हो रहा है, नेगेटिव देखने का दृष्टिकोण बन गया तो मन शांत रह सकता है, मन जीत बन सकते हैं। हर बात में कल्याण है, कुछ न कुछ उसको चेंज करके, इस बात में भी कुछ भला है, इसमें भी कुछ उन्नति है, इसलिए मुझ आत्मा को कभी भी नेगेटिव नकारात्मक चिंतन नहीं करना है, उसको चेंज करो सकारात्मक। और जो सकारात्मक चिंतन करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना जानता है, उसका उमंग और उत्साह कभी कम नहीं होता। निरंतर हमारा उमंग उत्साह बना रहे, कायम रहे, इसलिए कोई भी दृश्य देखते हो बहुत गलत दिखाई देता है, मान लो आपको लगता है ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वर्णन और चिंतन करने की बजाय, तो वर्णन चिंतन से क्या नुकसान होता जानते हो आप सभी, जो भी वायुमंडल भारी होता है, जो भी वायुमंडल खराब होता है, वातावरण बिगड़ता है, उसका कारण है वर्णन और चिंतन। कोई बात हो गई, फुल स्टॉप लगा दी, मान लो आपने फुल स्टॉप लगाई, वो समाप्त हो गई, और अगर एक के कान में आपने वो बात दे दी, वो कान से दूसरे कान तक गई, दूसरे से तीसरे तक गई, 10 तक अगर वो बात फैल गई तो वही वातावरण बन जाएगा, और अगर वातावरण नेगेटिव बना दिया तो एक बोझ चढ़ जाएगा, और बोझ वाली आत्मा कभी भी मन जीत नहीं बन सकती है, मन पर विजय नहीं हो सकती, चलता रहेगा, चलता रहेगा, क्यों, क्या, कैसे, अनेक व्यर्थ प्रश्नों की जाल बन जाएगी और उसी में उलझे रहेंगे, योग नहीं लगेगा। इसलिए जो हो रहा होने दो, बाबा कहता देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, आपके काम का है तो देखो, नहीं तो नहीं देखो, आपका अगर फायदा है तो जरूर देखो, सुनो, आगे बढ़ो, लेकिन अगर आपका उसमें कोई मतलब नहीं है तो बाबा कहता बच्चे हियर नो इविल, ये भी इविल है, ये भी बुरा है, देखना ही नहीं। इसलिए नेगेटिव को पॉजिटिव में, नकारात्मकता को सकारात्मकता में चेंज कर देना माया जीत बनने की विधि है। और एक बल बहुत जरूरी है हमारे इस जीवन में, अनेक माया की परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करा देता है। शारीरिक या मानसिक कोई भी परिस्थिति सामने आ जाए, अगर आत्मा के पास दुआओं का बल है, सुख दिया है, सुख लिया है, आज्ञाकारी बन करके रह रहा है, कोई पेपर आएगा संस्कार का, स्वभाव का, माया का, कोई भी आएगा, कोई भी जाल आएगी तो सहज उसको पार कर लेगा। तो मन जीत कैसे बने, ये 7 बातें याद रखना। अगर हम सब दुआएं जमा करते रहें, स्टॉक हो, सदा सकारात्मक चिंतन हो, एक बल एक भरोसा हो, अपनी घोटें दूसरे को न देखें, सदा समान में रहें, प्राप्ति संपन्न बन करके रहें, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करें, और अंदर से दिल का वैराग्य हो तो इस माया के चक्रव्यूह से हम बच सकते हैं। और अगर माया के चक्रव्यूह में नहीं फंसे तो आत्मा स्वतंत्र है, कितनी सेवा कर सकती है। बाबा कहता बच्चे अभी समय है दुखियों की पुकार सुनो, तो सुनाई देती है। कितनी आत्माएं पुकार रही हैं, कितनी दुखी हैं, कितनी परेशान हैं। तुम बच्चों को भगवान मिला है और तुम्हें टाइटल दिया मास्टर दुख हरता सुख करता। उस सुख स्वरूप स्थिति में बैठ करके उन दुखियों के दुख सुन करके दुखी नहीं हो जाना। बीमारी अगर डॉक्टर बीमारी पेशेंट के बीमारी को सुन करके खुद बीमार पड़ जाए उसको दवाई क्या देगा। सुख स्वरूप स्थिति में रह करके उन्हें सुख की शांति की शक्ति की अंजलि दो। मन जब अपनी सुख स्वरूप स्थिति में होगा बहुत खुशी के अच्छे अच्छे संकल्प करेगा, बहुत नशे में रहेगा तो जो दुखी आत्माओं की आवाज सुनाएगी उसको उसके वाइब्रेशन सुखी कर देंगे, ये मनसा सेवा हो जाएगी। अगर हम दुखी हैं तो दुखी बन करके हम दुखियों के दुख दूर नहीं कर सकते। इसलिए मनसा सेवा करने के लिए सुख स्वरूप स्थिति के द्वारा अनुभव कराने के लिए मन बहुत लाइट चाहिए, बहुत खुशनुमा चाहिए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे रोज खुशी की खुराक खाओ, इतना अपने आप को प्रसन्न कर लो प्रफुल्लित कर लो, इसमें भले मियां मिट्टू बनो, इसमें छुट्टी है। अपने आप की महिमा करके बाबा मिला भगवान मिल गया, कितना ऊंचा भाग्य बना दिया, कितनी ऊंची पढ़ाई है, कितना श्रेष्ठ संघ है, कैसा अच्छा परिवार है, कितना अच्छा भोजन मिल रहा है, अपने भाग्य की। कई बार बाबा कहता अपनी पीठ अपने हाथ से थपथपा लो, अपने आप की महिमा करो, प्रसन्न चित्त स्थिति में रहो और जितना हल्के हैं जितना खुशनुमा है उस सुख स्वरूप स्थिति में है उतना आत्माओं को सहारा दे सकेंगे, मदद दे सकेंगे, मनसा सेवा कर सकेंगे। जिनको जो आवश्यकता है वो मिलेगी, लेकिन मैं ही उलझा हुआ हूं, मैं ही किसी चक्रव्यूह के अंदर फंसा हुआ हूं, मुझे ही कुछ चाहिए चाहिए कि चाहनाएं लगी हुई हैं, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, मैं ही कहीं ना कहीं किसी के चक्र में प्रभावित हूं या नफरत कर रहा हूं, किसी के प्रति बहुत शुभ भावनाएं हैं और किसी के प्रति एकदम घृणा है, ये तो अच्छा ही नहीं है। मनसा सेवा हो ही नहीं सकती, मन जीत बन ही नहीं सकते, मन हमारा कहना मानेगा ही नहीं। हम चाहेंगे कि चलो हम आज ये सेवा करें, वो भटकाएगा, इधर उधर के व्यर्थ संकल्प लाएगा। इसलिए इसको एक तो जब एकांत में बैठते हो पहले देखो, देख सकते हो ना किधर जाता है तू, हम बैठे यहां आए जा कहां रहा है तू, बहुत एकांत में उसकी तरफ नजर दौड़ाओ जाता किधर, क्या चाहिए इसको। और जब देखते जाएंगे तो अपने आप में कंट्रोल आ जाएगा, और जब कंट्रोल आ जाएगा तो उसको मोड़ करके फिर बाबा की तरफ लगा दो, चिंतन की धारा को बदल दो तो जीवन बदल जाएगा। यही चिंतन की धारा, यही संकल्प शक्ति को मोड़ना, कंट्रोलिंग पावर आ जाए, कंट्रोल कर लो, व्यर्थ न जाने दो उसको, अच्छे अच्छे समर्थ संकल्प दे करके, खुशी के संकल्प अच्छे संकल्प दे करके अपनी अच्छी स्थिति बना लो, देखो आपको कितने अच्छे अच्छे अनुभव होने लगेंगे। तो मैं समझता हूं कल बाबा से आप सब मिलेंगे, जितने अच्छे संकल्प अमृत वेले से लेकर करेंगे, खुशी के संकल्प, नशे के संकल्प, उमंग के संकल्प, भगवान से मिलने के संकल्प, प्रफुल्लित होकर के रहेंगे, तो आपके संकल्प बाबा को एकदम ऐसे खींचेंगे और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भगवान के मिलने के हो सकेंगे। तो अभी सभी अभी से प्रैक्टिस करना है, बहुत खुशी में रहना, क्योंकि किसका जन्मदिन मनाने के लिए आए हो, भगवान का जन्मदिन, इंसान का नहीं, और वो हमारा जन्मदिन मनाने के लिए आएगा। तो हम सभी बाबा का जन्मदिन मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे और मन को बहुत कंट्रोल में बाबा के साथ जोड़ करके रखेंगे, कहीं भी न जाए, कुछ भी होने दो, कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ी बात भी हो जाए, कुछ कोई बोल के भी चला जाए तो भी आपका मन बहुत खुशनुमा, स्थिर, अचल, अडोल, एक रस है, तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव बाबा से होंगे। और ये मन जीत हो गया, अगर मन पर हमारी जीत हो गई तो बाबा कहता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। मन जीत जगत जीत, जगत पर राज्य हो जाएगा। तो हम सब जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, इसलिए सोचने पर मन पर बहुत कंट्रोल है, तो मन एक बहुत श्रेष्ठ ऊर्जा है जो भगवान से मिला करके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करा सकती है। तो मन जीत बन करके कल बाबा से अच्छा अच्छा मिल मनाना और अनुभव करना। ओम शांति।